प्रातः क्लास चल रहा था 30/3/1967 पहले पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी, आत्मा ही भाग्यशाली बनती है और आत्मा ही दुर्भाग्यशाली बनती है। भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली, बनती है कौन? आत्मा दुर्भाग्यशाली बनना चाहेगी? सभी भाग्यशाली बनना चाहते हैं, फिर बनती कैसे है दुर्भाग्यशाली? भाग्य विधाता तो एक ही गाया हुआ है, भक्ति मार्ग में कहते भी हैं भाग्य विधाता ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा था तो क्या सोए हुए थे? सोए हुए थे, मना ज्ञान नींद में थे, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से तो वेद वाणी मिलती है, वेद माने जानकारी, वेद। जानकारी अर्थात ज्ञान, सच्चाई का ज्ञान। सत्य क्या है? और जब सत्य की पहचान हो जाती है तो असत्य भी डिक्लेयर हो जाता है। और गीता में तो बताया ही हुआ है, सत्य वो है जिसका कभी विनाश नहीं होता। सत्य अविनाशी है, झूठ विनाशी है। वो चाहे सच्चा धर्म पिता हो जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाला हो, और चाहे वो देह अभिमानी धर्म पिताएं हो, जिनके आने के बाद दुनिया नरक बनती जाती है, क्योंकि नरक नर बनाता है, नर मनुष्य को कहा जाता है। मननात मनुष्य कहा जाता है, जो मनन चिंतन मंथन करता है वो मनुष्य है। नहीं तो जानवर है। और मनुष्य ही भाग्यशाली बनता है, परंतु दुनिया में मनुष्य तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा देखें तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 500-700 करोड़ तो हैं। तो सारी मनुष्य सृष्टि में सत्य के रूप में स्थायी रहने वाला कोई तो होगा। क्योंकि ये बात पक्की है, आत्मा सत्य है। ये देह सत्य है, देह आज है कल नहीं होगी, आत्मा तो अविनाशी है। तो अविनाशी आत्मा का बाप भी अविनाशी, परंतु आत्माओं का बाप सत्यधाम का वासी है। सदा सत्य है, क्योंकि वो देह के मना जन्म के चक्र में नहीं आता है। जो आत्माएं देह धारण करती हैं और देह के जन्म मरण के चक्र में आती हैं, वो सदा सत्य धाम की वासी नहीं है। जो सदा सत्य धाम का वासी है वो ही त्रिकालदर्शी है। तो क्या इस संसार में जिसे हम स्वर्गलोक या मृत्युलोक कहते हैं, जहाँ देव आत्माएं भी रहती हैं, मनुष्य आत्माएं भी रहती हैं और राक्षसी आत्माएं भी रहती हैं, तो इन आत्माओं के बीच में जन्म मरण के चक्र में आने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संसार रूपी चक्र में सदा काल रहता हो। आत्मिक स्थिति से सत्य धाम का तो नाम ही सत्य है, उसके असत होने का तो सवाल ही नहीं। और सत्य धाम में सत्ता आत्माएं ही रहती है। पांच विनाशी जड़ तत्वों की तो बात ही नहीं, क्योंकि वो सत्य धाम तो तुरीय तत्व है। परंतु इस संसार को सदा सत्य धाम नहीं कहा जाता। ये संसार झूठा भी मनता है, झूठ कंड जिसे कलयुग कहते हैं, और ये संसार सत्य खंड भी बनता है जिसे सत्य युग कहते हैं। क्योंकि ये संसार और इस संसार की हर चीज चार अवस्थाओं से जरूर पसार होती है। ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो से पसार न होता हो। तो क्या तामसी दुनिया से पसार होने के बाद ये दुनिया झूठों के द्वारा सत्य बनती है? क्योंकि सत्य धाम का वासी वो तो सदा सत्य धाम का वासी है, भले सत्तामो प्रधान दुनिया में आता है तो भी सत्य की स्टेज में स्थित रहता है, बुद्धि से सत्य धाम का ही वासी रहता है। क्योंकि बुद्धि से जन्म नहीं लेता, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, गर्भ से जन्म नहीं लेता, इसलिए त्रिकालदर्शी है। और सदा त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का, भूत का, भविष्य का, वर्तमान का सत्य ज्ञान उसकी बुद्धि में रहता है। वो सर्वोपरि शुद्ध बुद्धि है, कभी भी बुद्धि मैली नहीं होती। इसलिए उस बुद्धि रूपी आत्मा में सत्य का ही वास रहता है। परंतु इस संसार में सदा कालवासी नहीं है, जब इस संसार का पूरा पतन हो जाता है, दुखमयी दुनिया बन जाती है, जहां सब आत्माएं अनुभव करती हैं ये दुख धाम ही है, इसमें सुख का लेश मात्र भी नहीं है, सब छटपट आते हैं, इस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए लेकिन सब झूठे और कोई को सत्य का ज्ञान नहीं क्योंकि पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश पांच तत्वों से बने शरीर के बंधन में बंधे हुए दुनिया के सभी प्राणी चौथी अवस्था में अंत तक आते आते अत्यंत दुखी हो जाते हैं। जब दुनिया की ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई ये नहीं कह सकता कि हम तन से धन से मन से मित्र संबंधियों से संपर्कियों से प्रसन्न रहते हैं ऐसी स्थिति में भूसत्त धाम का वासी जो सदा सत्य है गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है इस सृष्टि में गुप्त रूप से आ जाता है और उसको तो अपना शरीर नहीं है इंद्रियां ही नहीं है तो वो कैसे सत्य बात बताएगा सत्य क्या है असत्य क्या है कि दुनिया सत्ताधाम से दुखधाम कैसे बन जाती है इस दुनिया के आदि मध्य अंत का सारा राज बताता है लेकिन मुख तो है ही नहीं कैसे बताएगा तो इस संसार में जो आत्मा संसार में होते हुए भी संसार में सबके सन्मुख पार्ट तो बजाती है परंतु उसे कोई पहचान नहीं पाता इस सृष्टि रूपी चक्र में आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने वाली उस एक सत्तात्मा को कोई पहचान नहीं सकता जिसे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी कहा जाए और हीरो पाटधारी बनता कैसे है? सभी मनुष्य आत्माएं, सभी प्राणी मात्र अज्ञानी बन जाते हैं, सत्य की पहचान में जीरो बन जाते हैं। तो क्या जो हीरो पाटधारी आत्मा है वो भी जीरो बन जाती होगी? क्योंकि सृष्टि के आदि में परम पद प्राप्त करने वाला विष्णु कहा जाता है, जिसे कहें नो विशैटाल, सौ परसेंट अमृत, विषय विकार का नाम निशान नहीं, परंतु सृष्टि के आदि काल में होता है, जिसे नारायण भी कहते हैं। भारतीय शास्त्रों में नारायण का मतलब ये नार माने ज्ञान जल और आयन माने घर, ज्ञान जल के घर में रहने वाला क्या सदा रहने वाला? नहीं। कहा जाता है काजर की कोठरी में कैसो उसयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागे है। क्या? काले काजर से भरी हुई कोठरी हो और उसमें सकरा रास्ता हो कोठरी को क्रॉस करने का, तो कोई कितना भी बुद्धिमान सयाना होशियार हो फिर भी उसको कालिमा की लीक जरूर लगेगी। मना इस दुनिया का जो दुनिया एक रंगमंच है, इस रंगमंच पर सभी मनुष्य मात्र, सभी प्राणी मात्र आत्मा के रूप में पार्टधारी है और टाइम टू टाइम भिन्न भिन्न चोले लेकर के पार्ट बजाते रहते हैं इस दुनिया में। तो पार्ट बजाने वाले एक दूसरे के संग के रंग में भी तो आते होंगे कि नहीं? आते हैं। तो सबको संग का रंग लगता है। ऐसा कोई मनुष्य मात्र नहीं है इस दुनिया का जिसको अच्छा या बुरा संग का रंग न लगता हो, परंतु देखें गहराई से देखा जाए तो इस दुनिया में सौ परसेंट अच्छा संग देने वाला जो इबर प्योर कहा जाए जो कोई के संग के रंग में ना आता हो लेकिन अपना संग लगाता हो ऐसी आत्मा 100% सत्य आत्मा इस तामसी कलयुग की दुनिया में कोई नहीं होती है। क्योंकि सबको संग का रंग लगता है। तो कलयुग झूठ खंड से सच खंड कैसे बनता है? जो सदा सत्य धाम का रहने वाला है बुद्धि से, क्योंकि उसमें मात्र सात्विक बुद्धि होती है, मन होता ही नहीं। जो कभी चंचलता करे इवर प्योर बुद्धि है, जैसे गीता में कहा ये इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, सबको वशीभूत कर लेती है, और इंद्रियों से भी प्रबल मन है जो सभी इंद्रियों को वशीभूत कर लेता है, और मन से भी प्रबल मनुष्य मात्र की नंबर बार बुद्धि है। कि मनुष्यों की बुद्धि एक जैसी होती है और जो बुद्धिमान मनुष्य हैं उन बुद्धिमानों की बुद्धि वो है। ऐसे गीता में कहा है इंद्रियाणि परान्याहो इंद्रियेभ्य परम मन मनसस्तु पराबुद्धि यो बुद्ध्यः परसस्तु सः। सह माने वह, कहने वाले ने ये नहीं कहा कि सबसे परे मैं हूं, या सबसे परे हम सब हैं, या सबसे परे तुम हो। क्या कहा? वह, इसका मतलब जिस बोलने वाले ने बोला, कोई आत्मा ने तो बोला होगा, क्योंकि बोलने वाली आत्मा होती है, न कि जड़ शरीर बोलता है। आत्मा ने बोला तो वह कह करके किसकी तरफ इशारा किया है? आत्माओं का बाप जो मात्र ज्योति बिंदु है, उसका शरीर नहीं है, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। उसने कहा कोई के तन में प्रवेश होकर कि सबसे परे वो है, मैं नहीं, तुम नहीं, तो वह कह के किसकी तरफ इशारा किया है? बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाप, वो ही तो बोल रहा है। अरे गीता ज्ञान देने वाला कौन? गीता ज्ञान देने वाला निराकार आत्माओं का बाप, निराकार आत्मा शिव ही तो है। तो वो क्या देता है निराकार आत्माओं का निराकार बाप? ज्ञान देता है, वो अकूट ज्ञान का भंडार है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में ना आने से त्रिकालदर्शी है। लेकिन ये भी कहता है कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, थ्योरी के आधार पर। क्या? मैं सारी थ्योरी जानता हूँ, आदि मध्य अंत की थ्योरी जानता हूँ, आत्माओं के पार्ट के संबंध में भी आदि मध्य अंत जानता हूँ, सृष्टि का आदि मध्य अंत जानता हूँ, अपने बारे में भी जानता है। लेकिन वो थ्योरेटिकल ज्ञान से भरपूर अखूट भंडार स्वयं कहता है कि मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। क्या? तुम बच्चे नंबर बार मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हो, माने बनते हो, मैं नहीं बनाता हूँ, बनते हो। मैं किसी को बिगाड़ता नहीं, मैं किसी को बनाता नहीं। जैसे वो देहधारी धर्म पिताएं आते हैं, इस दुनिया की 2500 की हिस्ट्री में वो आकर के आखरीन बिगाड़ने के निमित्त बनते हैं, या इस दुनिया को सुधारने के निमित्त बनते हैं। क्योंकि देहधारी देह धारण करने वाले हैं और देह कैसी है, विनाशी है। तो देह को धारण करने वाले वो भी क्या करेंगे, विनाश ही करेंगे। सिर्फ ज्ञान ही नहीं देंगे, देह धारण करके देह अहंकार में आकर के खुद को ऊंचा बताएंगे, साबित करेंगे और सबको क्या करेंगे, नीचा गिराएंगे, नीचा साबित कर देंगे। इसलिए कोई भी देहधारी मनुष्य कोई मनुष्य मात्र का कल्याण नहीं कर सकता। अकल्याण करते हैं, कल्याण नहीं करते। प्राणी मात्र का भी कल्याण नहीं करते। फिर कौन कल्याण करता है? कल्याण या कल्याण करने का काम प्रैक्टिकल में होगा या सिर्फ थ्योरी से हो जाएगा? और सत्य धाम का सदा कालवासी वो तो कहता है मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। क्या अकर्ता भी हूँ, करता कुछ है नहीं और अभोक्ता, न दुख भोगता न सुख भोगता। तो फिर कलयुग के अंत में इस तामसी दुनिया का, दुखदायी दुनिया का कल्याण कौन करता है प्रैक्टिकल में? कल्याण करने वाला निवृत्ति में रहने वाला होगा या सदाकाल की प्रवृत्ति में रहने वाला होगा? है सदाकाल की जो प्रवृत्ति में रहा हो वो ही प्राणी मात्र का कल्याण कर सकता है। क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहने वाली कोई भी आत्मा रूपी पार्टधारी नहीं है जो कभी प्रवृत्ति में ना आता हो। कोई मनुष्य मात्र नहीं है, कम या ज्यादा। जो अपन को बड़ा ता बड़ा सन्यासी बताते हैं, जैसे हिस्ट्री में कौन प्रसिद्ध है, है? वो हिस्ट्री नहीं है, उसे कहते हैं पौराणिक गाथा। हिस्ट्री उसे कहा जाता है जिसके सारे प्रूफ और प्रमाण मिलते हों। तो शंकराचार्य उनके प्रूफ मिलते हैं कि वो 8 वर्ष की अवस्था में घर परिवार को छोड़कर संपूर्ण न्यासी बन गए। न्यासी माने त्यागी। और जीवन भर त्यागी रहे, सन्यासी बनकर रहे। तो क्या शंकराचार्य की आत्मा ने कभी भी प्रवृत्ति का सुख नहीं भोगा? कहाँ भोगा? वो तो सारा जीवन सन्यासी रहे।
एक और विद्वान के साथ उनका चर्चा हुआ, उसी पति में प्रवेश करके।
हाँ, शरीर रहते रहते भले वो प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया, परंतु उस आत्मा ने शरीर छोड़ने के बाद कोई में प्रवेश करके प्रवृत्ति भोगी। तो आत्मा ने पार्ट तो बजाया प्रवृत्ति का कि नहीं बजाया? ऐसे ही इस संसार में कोई भी जीव जंतु नहीं है जो जीवन में कभी भी प्रवृत्ति का सुख न भोगे। क्योंकि ये जो दुनिया है वो प्रवृत्ति का खेल है। दुनिया का जो रचयिता है वो स्वयं प्रवृत्ति मार्ग का है। कौन? शिव बाबा। क्या? कैसे? उसको कहते हैं पुरुष। पुरुष माने शरीर रूपी पुरी में चयन करने वाला। मस्त रहने वाला। तो कौन है जो सदा काल मस्त रहता है, जिसको कलयुग के अंत तक उस गंदी दुनिया तामसी दुनिया का संग का रंग नहीं लगता? कोई है? अरे है? हम मनुष्य शब्द नहीं लगाया, आत्मा रूपी पार्टदारी की बात की है। प्रजापिता ब्रह्मा अंतिम जन्म में कभी रोया नहीं क्या? दुखी नहीं हुआ होगा? क्योंकि नियम तो यही है, इस दुनिया में जो जितना सुखी होता है एक दिन जरूर ऐसा आता है वो इस दुनिया में उतना ही दुखी भी जरूर होता है। जो जितना ऊंचा जाता है वो उतना नीचे भी जरूर आता है। कोई 6-8 फीट की हाई जंप लगा सकता है तो 8 फीट नीचे भी आएगा या नहीं आएगा? तो बताओ कौन है? हैं? मनुष्य सृष्टि का बाप तो बताया प्रजापिता। 500-700 करोड़ इस सृष्टि की मनुष्य रूपी प्रजा और 500-700 करोड़ का बीज बाप प्रजापिता। मनुष्य है तो दुखी भी होगा और सुखी भी होगा। देवत्व प्राप्त किया तो सुखी ही सुखी होगा। तो फिर कौन है? हैं?
शंकर?
शंकर याद में बैठा है। याद करना अपने से ऊंचे को याद किया जाता है या नीचे को याद किया जाता है? है तो क्या साबित होता है? शंकर जिसको याद करता है घड़ी घड़ी याद में बैठ जाता है। तो जिसकी याद में बैठता है जरूर उसको इस संसार में सबसे जास्ती जिसने सुखी किया है या सुख का रास्ता बताया है उसी को याद करता होगा। नहीं है?
इच्छा होती है तो याद
करता
है।
तो कौन है?
शिव बाप।
हाँ, क्योंकि थ्योरी को जानने वाला और प्रैक्टिकल को भी जानने वाला पास कहा जाता है। क्या? थ्योरी को भी जाने और प्रैक्टिकल को भी जाने तो पास, और थ्योरी में फेल और प्रैक्टिकल में पास तो फेल या पास? पास। कोई डॉक्टर है प्रैक्टिकल में डॉक्टरी का धंधा करता है और धंधा करते हुए जीवन में कभी फेल नहीं हुआ कोई भी सफा लेने वाले मरीज को मार नहीं दिया स्वस्थ कर दिया। तो सारी दुनिया उसे अच्छा डॉक्टर कहेगी पास करेगी डॉक्टरी में या फेल करेगी? पास करेगी। और अगर प्रैक्टिकल में फेल हो जाए और थ्योरी में प्रकांड विद्वान हो तो क्या कहा जाएगा? फेल। इसी ने बड़े अच्छे नंबरों से वकालत पास कर ली, और प्रैक्टिकल जीवन में वकील बनकर कोर्ट में खड़ा होने लगा, और जीवन में चार आने दस आने रुपया दो रुपया चार रुपया नहीं कमा सकता। ऐसे भी वकील होते हैं या नहीं होते हैं? तो प्रैक्टिकल में फेल या पास है? फेल। तो अब बताओ, वो सत्त धाम का वासी जो त्रिकालदर्शी है, सत्य के ज्ञान में माना थ्योरी में 100% तो क्या अखूट ज्ञान का भंडार, जिसमें से सारा भंडार कोई निकाल ले तो भी पूरा का पूरा बचता है। तो वो प्रैक्टिकल कहा जाए या नहीं कहा जाए? है प्रैक्टिकल नहीं कहा जाएगा, इसलिए वो जब इस सच रूपी रंगमंच पर आता है तो स्वयं बोलता है वेदवाणी में, कि मैं जब आता हूँ तो भारत पर फिदा होकर आता हूँ। क्या? भारत का आशिक बनकर आता हूँ। तो खुद क्या हुआ? आशिक हुआ, माशुक हुआ, तो आशिक है। तो माशुक कौन हुआ? जिसके पीछे भाग कर आया वो क्या हो गया? माशुक। जो जिसके पीछे भागता है कुछ प्राप्ति के लिए भागता है या ऐसे ही भागता है?
प्राप्ति के लिए।
कुछ सफलता प्राप्त करने के लिए भागता है या ऐसे ही भागता है? सफलता के लिए भागता है। तो ये दुनिया में परंपरा बन गई, क्या प्राणी मात्र में परंपरा बन गई, मनुष्य मात्र की परंपरा बन गई, क्या है? जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी प्राणी मात्र हैं, उनके जीवन में जन्म से लेकर एक ऐसा टाइम आता है कि वो अपने अंदर के सत्व को सुरक्षित करके नहीं रख सकता, धारण करके नहीं रख सकता। क्या है? आता है ऐसा एक टाइम, हर प्राणी हर मनुष्य मात्र के जीवन में आता है कि जन्म से लेकर युवावस्था आने तक जो सत्व उसके अंदर है या सत्व इकट्ठा हुआ है, सत्व माने सबसे बड़ी शक्ति का सार, उसको वो स्वयं जीवन में धारण नहीं कर सकता, तब क्या करता है? हाँ, उसको धारण कराने के लिए कोई आधार के लिए छटपटाता है। और कौन छटपटाता है? पुरुष छटपटाता है या स्त्री छटपटाती है? पुरुष छटपटाता है। क्या है वो? देवताओं? चाहे वो मनुष्य हो और चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीटाणु हो, कोई भी प्रकार का जर्म सो हो, है?
परम पिता भी वही।
वो तो स्वयं ही गीता में बोलता है। क्या? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। जो भी मनुष्य मात्र है इस दुनिया में मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। जो मैंने रास्ता दिखाया है उसी रास्ते का सब अनुगमन करते हैं, फॉलो करते हैं। अरे दुनिया में परंपराएं पड़ती हैं, परंपराओं पर लोग चलते हैं, तो उन परंपराओं की शुरुआत कोई करता है या नहीं करता है? है? अरे उस परंपरा की शुरुआत तो कोई ने की ही या नहीं की?
की
है। अच्छे से अच्छी परंपरा की शुरुआत जो इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली आत्मा अच्छे से अच्छी होगी वो ही डाल सकती है। क्या? जो स्वयं अच्छी नहीं होगी वो अच्छी परंपरा नहीं डाल सकती। तो अच्छे से अच्छी पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? कोई है या नहीं है? कौन?
हीरो पार्ट
नहीं।
शिव बाप है।
हीरो कभी जीरो बनता है या नहीं बनता है? तो उसको बनाने वाला कौन? कोई है या नहीं है? तो जो बनाने वाला वही तो ऊंचा हुआ।
बनाने वाला शिव बाप है।
अब बदल गई ना। बार बार भूल क्यों जाते हैं? वो बार बार ये बात सिखाता है। कि साकार और निराकार के मेल में से शिव को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? शव बचेगा, मुर्दा है, मुर्दे को याद करेंगे तो क्या बनेंगे, मुर्दा ही बन जाएंगे। तो सवाल है वो झूठ खंड को कलयुग की दुनिया को सच खंड सतयुग बनाने वाला कौन हुआ। अरे कोई प्रैक्टिकल में होता है या नहीं होता है?
प्रैक्टिकल में यूरोप
कैसे होता है?
शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसके द्वारा ही प्रैक्टिकल पार्ट चलता है।
शिव बाप तो कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ,
लेकिन साथ में ये भी कहा मैं टेम्परेरी उसमें नहीं, मेरा परमानेंट रखे हुए में।
परमानेंट किसे कहा जाए? परमानेंट उसे ही कहेंगे जो आदि में भी हो, मध्य में भी हो और अंत में भी हो। तो कौन है? है शिव बाबा परमानेंट है, सदाशिव है, सदाशिव सत्यधाम का वासी है, सत्यधाम सदा सत्य है। या जो झूठ धाम बनता है वो भी सत्य है और झूठ धाम का वासी भी सदा सत्य है, है? इसलिए बोला इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सदा सत्य बाप सत्य आकर बताता है उस शक्ति को ही अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मानकर चलता है। और प्रॉपर्टी बाप से मिलती है, किसे? बाप से। और बाप की प्रॉपर्टी को धारण करने वाला हिस्ट्री में प्रसिद्ध है, खास भारत में और आम दुनिया में भी जो बाप की प्रॉपर्टी हासिल करने वाला बड़ा बच्चा होता है वो बाप की सारी प्रॉपर्टी हप करता है। इसीलिए हिस्ट्री में राजाओं में ये परंपरा रही कि लगभग सभी राजाओं ने अपने राज्य की प्रॉपर्टी किसको दी? बड़े बच्चे को दी। ये परंपरा कहां से चलती है? कौन डालता है, शुरुआत कौन करता है? कोई मम वर्तमान वर्तन्ते, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र मेरी ही परंपरा पर चलते हैं। कमोबेश कोई कम कोई ज्यादा, चलते जरूर है। तो ये परंपरा भी जिसे महेश्वर कहा जाता है, परमेश्वर, परम ईश्वर, ईश माने शासन करने वाला, वर माने श्रेष्ठ, परमेश्वर अच्छे ते अच्छा शासन करने वाला कौन? अरे 80 साल हो गए ज्ञान लेते लेते, इस बात को तो जवाब देना चाहिए तुरंत। परमेश्वर कौन हुआ? अगर कहें नारायण तो शास्त्रों में तो गाया हुआ है, नर को नारायण बनाने वाला कौन है?
हैं? तो शासन करते नहीं है।
कौन? ना आपने नारायण का नाम लिया, परमेश्वर नारायण को बनाने वाला कौन? तो नारायण परमेश्वर हुआ या बनाने वाला परमेश्वर हुआ? कैसे बनाता है? खुद तो बनता नहीं है। कोई बाप हो, खुद धनवान न हो, तो बच्चे को धन का वर्षा देगा है? धन कैसे देगा? स्थूल धनवान होगा तो स्थूल धन देगा, और निराकार आत्माओं का बाप निराकारी जो आत्मा शिव कही जाती है, वो निराकार ज्ञान देगा, निराकारी प्रॉपर्टी ज्ञान की देगा। तो ज्ञान की निराकारी प्रॉपर्टी से जो बनता है और निराकार आत्माओं के बीच आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो बड़ा भाई होता है, कोई होता है या नहीं होता है? और बड़ा बड़ा भाई अपने आप बनता है या कोई बनाता है? है बाप बनाता है। क्यों कहा गीता में आत्मा अपना शत्रु और आत्मा अपना मित्र स्वयं ही है, या शत्रु और मित्र कोई दूसरा होता है? है स्वयं है। अभी भी बोला भाग्यशाली आत्मा बनती है और दुर्भाग्यशाली भी आत्मा बनती है, तो अपने आप स्वयं जिम्मेवार है बनने और बिगड़ने के लिए। भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली बनने के लिए आत्मा स्वयं जिम्मेवार है या कोई दूसरा जिम्मेवार है?
स्वयं जिम्मेवार।
स्वयं ही जिम्मेवार है, इसलिए बाप की प्रॉपर्टी ग्रहण करने में जो बच्चा बड़े से बड़ा जिम्मेवार बनता है। प्रॉपर्टी संभालने में जिम्मेवार बनता है और प्रॉपर्टी को बढ़ाता है या खलास कर देता है, वो जिम्मेवार बच्चा बढ़ाने वाला। तो शिव बाप ने आते ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्या पहचान दी? पहले पहले फाउंडेशन में क्या पहचान दी है? हाँ, कि तुम देह नहीं हो। इतना बड़ा दुम्ब नहीं हो तुम, तो इस देह में रहने वाला अति सूक्ष्म बीज हो। ज्योति स्वरूप हो, जिस ज्योति रूपी बीज आत्मा की रोशनी ज्ञानेन्द्रियों में सबसे श्रेष्ठ है। कौन सी इंद्रिय? आंखों से निकलती है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आंखें निर्जीव दिखाई देती है। इसे साबित होता है कि आत्मा प्रकाशमय है, ज्योतिर्मय है या ज्योतिहीन है? ज्योतिर्मय है। एक तो अति सूक्ष्म बिंदु है, दूसरा ज्योतिर्मय बिंदु है, और तीसरी बात राजा अपने राज्य में ऊंची गद्दी पर बैठेगा या नीचे बैठेगा? तो ये आत्मा राजा है और ये शरीर इंद्रियां सब प्रजा है। तो शरीर में जो उत्तम अंग कहा जाता है, कैसा अंग? उत्तम ते उत्तम अंग। और उस उत्तम अंग में भी जो ब्रकुटी कही जाती है, क्या नाम दिया? बड़ी पूरी कुटी। क्या? कुटी, कुटिया। उस ब्रकुटी में मध्य में रहने वाली है जिसकी यादगार आज भी भारत में माताएं ब्रकुटी में है। टीका नहीं, टीका पुरुष लगाते, बिंदु बिंदी लगाती हैं। तो तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो, इस देह में प्रकृति के मध्य रहने वाली हो और देह भल विनाश हो जाए लेकिन आत्मा अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। ठीक, आत्मा ज्योति बिंदु है, बिंदु जितना छोटा बनाओ उतना छोटा होता जाएगा। आज के वैज्ञानिक भी ये मानते हैं, क्या जिन्होंने अणुबम बनाया है वो क्या मानते हैं, है अणु जितना सूक्ष्म समझा जा सके, इन आंखों से नहीं क्योंकि ये स्थूल आंखें हैं, वो तो सूक्ष्म आत्मा है तो इन आंखों से नहीं देख सकते, तो सूक्ष्म यंत्रों से देख सकते हैं, परंतु यंत्र भी तो कितने भी छोटे हों स्थूल होंगे या देखने योग्य नहीं होंगे, है स्थूल होंगे। इसे साबित होता है ये आत्मा इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु है कि उसको वैज्ञानिक यंत्रों से भी नहीं पकड़ा जा सकता। फिर कैसे पकड़ा जाए, पकड़ में आए तो उसको स्थिर किया जाए, स्थिर हो जाए तो अमर कहा जाए, या मृत्यु पाने वाला कहा जाए, अमर कहा जाए। तो उस ज्योति बिंदु आत्मा को जिसे गीता में कहा है अणुअणियां सम्मन स्मरित्य, अणु से भी अणु है, जो स्मरण करने वाले ऋषियों मुनियों ने स्मरण करने का प्रयास किया है, परंतु कोई भी ऋषि मुनि पंडित विद्वान आचार्य ग्रेट फादर्स कहा जाने वाला कोई धर्म पिता नहीं हुआ जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो, कोई ने पाई नहीं। क्यों, क्योंकि उस सूक्ष्म आत्मा को पकड़ने का यंत्र कौन सा है पता ही नहीं किसी, तो कौन पता करेगा। है कोई पता कराने वाला होगा या नहीं होगा, कौन निराकार आत्माओं का निराकार बा आत्मा ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म, तो बाप भी निराकार अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। अरे सीधी सी बात, सांप का बाप सांप जैसा लंबा, चींटी का बाप चींटी जैसा छोटा। हाथी का बाप हाथी जैसा डबल डील वाला मोटा ताजा। तो अति सूक्ष्म तुम आत्मा है, तो तुम अपने बाप को पहचानो। क्या कैसा बाप भी कैसा? अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु। लेकिन ये बिंदु की पहचान बाप की पहचान वो निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप शिव स्वयं तो नहीं दे सकता है? देता है नहीं? तो किसको निमित्त बनाता है? है किसको? बड़े बच्चे को निमित्त बनाता है बाप की पहचान देने के लिए। वो बच्चा, बड़ा बच्चा, वो पहले ही जानता था क्या कि मुझे आत्मा का बाप, निराकार ज्योति बिंदु आत्मा का बाप कौन है, कहाँ है? जानता था है नहीं जानता था? है कौन सी माँ? नहीं, ब्रह्मा तो स्वयं देहधारी धर्म पिताओं के बीच में बड़े से बड़ा देहंकारी धर्म पिता। जो स्वयं बड़े से बड़ा देहंकारी धर्म पिता हो वो आत्माओं का बाप, जो देह में आता है, देहधारियों के बीच इस दुनिया में पार्ट बजाता है, फिर भी उसको संग का रंग नहीं लगता, क्योंकि देहधारी में प्रवेश करने के बावजूद भी, देहधारियों के बीच में रहने के बावजूद भी वो बुद्धियोग से सत्तधाम का सदावासी है, रहता है। और आत्मा जो सत्य है उस सत्य की तेज में ही सदा स्थिर रहता है। अंश मात्र भी उसमें कभी भी असत्य का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए संग का रंग भी नहीं लग सकता। तो सवाल है, जो परंपरा है कि बच्चों को बाप का परिचय कौन देता है? देखो कौन सी माता है, जिसने निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं के बाप, ज्योति बिंदु का सच्चा परिचय पहले पहले दिया था। है बड़ी मत बड़ी माँ जो देवान में आती है, महाकाली बनती है, वो बाप का परिचय देती है। काली कालों को व्यक्त करेगी, इस संसार में या गोरों को प्रत्यक्ष करेगी। कलम ही होगी तो काले ही पैदा करेगी, कालों को प्रत्यक्ष करेगी और क्या होगी, महान गौरी होगी तो किसको प्रत्यक्ष करेगी, गोरों को अपनी कोख से प्रत्यक्ष करेगी। शास्त्रों में कोई उदाहरण है, दिति अदिति कहते हैं, जो कश्यप ऋषि थे, काश्य माने तेज, पा माने पीने वाले, क्या पीने वाले, काश्य रूपी तेज को पीने वाले कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी का नाम दिति और छोटी का नाम अदिति। दिति का अर्थ होता है खंडित और अदिति का नाम होता है अखंड। जिसका सत्व खंडित हो जाए वो दिति, और जिसका सत्व सतीत्व अखंड बना रहे जीवन में वो अदिति। तो अब बताओ कौन सी माता होगी, जिसने पहले पहले बाप का परिचय दिया हो, है? हाँ, जैसे सत्व है, सत्य है आत्मा, और देह असत्य है। देखा जाए माताएं अनुभव भी करती होंगी, पहले गर्भ में सत्य कही जाने वाली आत्मा आती है या गर्भ में पांच तत्वों का पुतला बनता है, है? तो बड़ा कौन हुआ, कौन बड़ा हुआ? पांच तत्वों का पुतला बड़ा हुआ या बाद में आने वाली आत्मा बड़ी हुई?
है देखने में तो पुतला ही बड़ा, लेकिन पावर तो
ओरिजिनल रूप में आत्मा दुखदाई या सुखदाई? सुखदाई। और देह दुखदाई, इसलिए बताया कि जब नई सृष्टि का ओरिजिन होता है तो पहले पहले असुरों का जन्म हुआ। क्या? आसुरी जो आत्माएं हैं उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है और बाद में देव आत्माओं का जन्म होता है। तो असुर बड़े हो गए और देवात्माएं छोटी हो गई। ये परंपरा भी सृष्टि के आदिकाल की है। क्या जब ऊंचे से ऊंचा बाप इस सृष्टि पर आता है तो विदेशी बनकर आता है या स्वदेशी बनकर आता है? विदेशी बनकर आता है। बनकर आता है या होता भी है वैसा? बनकर आता है। इसका मतलब जो देखने में बनकर आता है वो वैसा है नहीं, मन बहुरूपिया बनकर आता है। जो देखने में आता है वो बहुरूपिया देखने में आता है नहीं। इसलिए उसकी यादगार नारियल देगा बनाया हुआ है भक्ति मार्ग। रियल है या नारियल है? नारियल। और रियल पार्टधारी नहीं है जैसा देखने में आता है। क्या? संसार जैसा देखता है समझता है वैसा रियल नहीं है, माना नारियल है। रियलिटी कुछ और है। कब? जब भगवान की जो ऊंचे से ऊंचा रचयिता है वो इस सच रूपी रंगमंच पर नई दुनिया जब रचता है तो वो ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहने वाला नारियल जो कहा जाता है वो बीज नारियल सार्वभौम माने जाने वाले भगवान के रूप में जो दुनिया में शिवलिंग पाया जाता है, दुनिया की बड़े से बड़ी खुदाइयों में देश विदेश की खुदाइयों में जो सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां पाई गई और भारत में भी जो यादगार मंदिर सबसे जास्ती बनाए हुए हैं उन मंदिरों में शिवलिंग के रूप में रखा हुआ है वो नारियल है पार्ट के हिसाब से षष्ठी के आदि में जो वो पार्ट बजाता है कैसा पार्ट है नारियल पार्ट रियल नहीं है रियलिटी तब जाहिर होती है संसार के सामने जब भगवान के सामने ले जाकर भक्ति मार्ग में क्या करते हैं फोड़ दिया जाता है तो उसमें से असलियत निकलती है क्या कि ये है असल में पहले तो जो देखने में आता था वो रियल नहीं था तो वो नारियल विदेशी बनकर आता है दिखावा कुछ और अंदर से कुछ और
नारियल को भी तीन आंखें होती हैं
जो तीन आंखें होती हैं वो स्थूल में होती हैं या अव्यक्त में होती हैं इन आंखों से देखने में जो आता है वो है व्यक्त और जो इन आंखों से देखने में नहीं आता वो अव्यक्त तो नारियल में जो तीन आंखें होती हैं वो देखने में आती है नहीं आती आती है
छीलने के बाद
हाँ जी उसका देहभान का छिलका उतर जाए डबल डबल छिलका है वो सारा छिलका उतर जाए और अंत में जो हार्ड से हार्ड छिलका है वो भी दाढ़ से जब टूट जाए तब प्रत्यक्ष होता है तो वो विदेशियों को प्रत्यक्ष करने वाला विदेशी के रूप में पार्ट बजाने वाला आखरीन दुखदाई साबित होता है या सुखदाई साबित होता है और पहले जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म है प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने तो विदेशी प्रत्यक्ष करते हैं या स्वदेशी प्रत्यक्ष करते हैं है विदेशी प्रत्यक्ष करते हैं क्योंकि ज्यादा बुद्धि विदेशियों में होती है या स्वदेशियों में होती है विदेशियों में होती है तो विदेशियों के बीच नंबरवार होंगे, एक समान होंगे। तो नंबर वन विदेशी कौन हुआ फिर? है इब्राहिम, ब्रह्मा। अच्छा, वो सत्य का भंडार अखूट, अखूट ज्ञान का भंडार कहता है। पूछता है ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा रचना या रचयिता है? रचना, तो उसका कोई बाप होगा कि नहीं होगा? है, बाप ज्यादा शक्तिशाली होता है या अम्मा ज्यादा शक्तिशाली होती है? तो दिखावा करने वाला ब्रह्मा सबसे जास्ती दिखावा करने वाला धर्म पिताओं के बीच में यह नंबरवार की लिस्ट में आता है, नंबर वन दिखावा करने वाला। दुनिया में क्राइस्ट और क्राइस्ट के फॉलोअर्स को कैसा मानते हैं? दिखावा बहुत करते हैं, वैसे होते नहीं। तो कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है किसे? क्राइस्ट कृष्ण की राशि, जो क्रिश्चियंस के शास्त्र में दिखाई गई है। कि प्रवेश करने वाली आत्मा और जिसमें प्रवेश हुआ वो अलग नामधारी था, जीसस। और कहते हैं क्योंकि देह का नाम ही गाया जाता है, तो कहते हैं किससे जन्म हुआ? क्राइस्ट का जन्म किससे हुआ? कुमारी से जन्म हुआ। अब कुमारी से कहीं जन्म होता है क्या? जन्म देने वाला तो बाप ही होता है। तो ये नकल कहां से की? है, संगम युग से ये नकल की गई कि वही कृष्ण वाली आत्मा मनुष्य सृष्टि का आधिपत्ता, जिस बाप से जन्म लेता है उस बाप को कोई कुमारी जन्म देती है या नहीं देती है? है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। कैसे? शंकर को मनुष्य सृष्टि में सारे जगत का जगत पिता माना जाता है। वो जगत पिता वाली आत्मा की प्रत्यक्षता स्वयं होती है संसार के सामने, जगत के सामने, कि उसको प्रत्यक्ष करने के निमित्त कोई कुमारी बनती है। कौन कुमारी बनती है?
लक्ष्मी।
वही कुमारी निमित्त बनती है जो महागौरी गई हुई है। वैष्णवी शक्ति मानी जाती है। विष्णु का अवतार मानी जाती है। विष्णु है
पार्वती कह सकते
हैं, पार लगाने वाली। वो जब तक रंगमंच पर प्रस्तुत न हो तब तक जगत पिता को कोई बच्चा, इस मनुष्य सृष्टि की कोई मनुष्य आत्मा पहचान ही नहीं सकती। 100% कि ये मेरा बाप है। पहचान ले, मान ले, निश्चय पैदा कर ले। बाप का निश्चय पैदा करना माने बाप का बच्चा बना, और बाप के ऊपर अनिश्चय हो गया तो बाप का बच्चा मर गया। तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र रूपी आत्माएं हैं मनुष्यों की, वो अभी मृत्यु लोक में है या अमर लोक में है? सबको अनिश्चय रूपी मृत्यु का मुकाबला करना होता है। कमोबेश कोई कम निश्चय निश्चय के चक्र में आती है और कोई ज्यादा से ज्यादा निश्चय निश्चय के झूले में झूलती है। वो झूला कौन से बच्चे को दिखाया जाता है? कृष्ण बच्चे को दिखाया जाता है। क्योंकि भारत की माताओं को बड़ी श्रद्धा है। किस बच्चे के ऊपर? कृष्ण बच्चे के ऊपर। जो शास्त्रों में कृष्ण बच्चा चित्रों में चित्रित किया गया, भाषा में दिखाया गया, वो सतयुग के आदि वाली 16 कला संपूर्ण जिसे गाते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, गाते हैं कि नहीं? तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण या नारायण? 16 कला संपूर्ण युग जो शास्त्रों में गाया हुआ है उसी युग का गायन है। कि द्वापर का गायन है जो झूले में झुलाया जाता है। विद्वानों ने कहां समझ लिया? द्वापर में समझ लिया। लेकिन विद्वानों में सभी का एक मत होता है या अलग अलग मतें भी हैं? तो कोई विद्वानों ने कहा कि शास्त्रों में तो लिखा है सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण, और द्वापर के अंत आते आते जब कलयुग शुरू होता है तो कलयुग के आदि हिस्सा जो सात्विक हिस्सा है वहां से लेकर कलयुग के अंत तक कलाहीन युग हो जाता है। तो जब शास्त्रों में हर युग की कलाएं निर्धारित की हुई है, तो द्वापर के अंत में 16 कला संपूर्ण बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? जो भगवान के रूप में माना जाता है, और वो भगवान द्वापर के अंत में जो पार्ट बजाता है, उसके बाद कौन सा युग आता है? तो पापी कलयुग की स्थापना करने के लिए भगवान आता है क्या? तो बात झूठी साबित हो जाती है। इसलिए विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कोई कहते हैं सतयुग के आदि में हे कृष्ण नारायण हुआ, परंतु दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि शास्त्र लिखने वाले मनुष्य हैं, देव आत्माएं हैं, देवता हैं या भगवान हैं? मनुष्य विकारों का पुतला होता है, मनुष्य का मन चंचल होता है, चंचलता के वशीभूत होकर वो सत्य असत्य बातें अनर्गल बोलता रहता है, लिखता रहता है। इसलिए गीता की सैकड़ों टीकाएं हुई, एक टीका दूसरी टीका से काटने वाली साबित होती है। माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक और परमपिता परमात्मा एक, शंकराचार्य की गीता कहती है एको ब्रह्म सुतियो नाथ, क्या एक ही आत्मा सत्य है, बाकी कुछ है ही नहीं, सब झूठ। तो देखो मूल में ही कितना झगड़ा, इसे क्या साबित होता है? इसे साबित होता है जो सच्चाई की मान्यता आज भी है, कह समझे कवि या समझे रवि, या तो जिस कवि ने वो कविता लिखी है उसके सही अर्थ को वो कवि ही जानता था, भगवत गीता रूपी गीत मनुष्य ने तो लिखी, नाम क्या डाल लिया? व्यासक प्रसादात, गीता में लिखा है, व्यास की प्रसन्नता से गीता मिली। तो व्यास भी दाढ़ी मूछ वाला या कहीं से देवता मनुष्य हुआ या देवता हुआ? भूल मनुष्यों से होती है या देवताओं से होती है? हैं? मनुष्यों से भूल होती है, देवताओं से भूल होने का सवाल नहीं, क्योंकि देवताएं तो सदैव आत्मिक स्थिति में सत्य में स्थिर रहते हैं। इसलिए व्यास ने भी जो लिखा, जो बाद में आने वाले कवि हुए, विद्वान पंडित आचार्य हुए, उनके मुकाबले तो सत्य लिखा, लेकिन 100% सत्य नहीं हो सकता। जैसे दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद सर्प का विष डाल दिया जाए तो सारे घड़े का दूध विषैला हो जाता है। यही सच्चाई है। कि उस सच्चाई को कोई मनुष्य मात्र नहीं पकड़ सका। जो सच्चाई जो 100% सत्य है, सदा सत्य है, सत्य धाम का वासी है, वो इस सृष्टि पर आता है। और जिस मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से आता है वो ही बड़ा बच्चा ऊंचे से ऊंचे बाप, जो बापों का बाप है, जिसका कोई बाप है ही नहीं, उस बाप की प्रॉपर्टी को सबसे जास्ती महत्व देता है। तन भी अर्पण करता है, सारा उसी की बताई हुई सत्यता के लिए। मन के संकल्प भी उसी की सत्यता को जाहिर करने के लिए, मन के संकल्प चलाता है। और जो भी धन पैदा करता है, तट पूंजिया, वो सारा ही धन उसी की सत्यता को संसार में साबित करने के लिए लगाता है। सारा समय भी, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे जास्ती कीमती चीज क्या है? समय। तो समय भी उसी की वाणी को सत्य साबित करने के लिए लगाता है। और तन के जो भी संबंधी हैं, जीवन में संपर्क में आने वाले हैं, उनकी भी सारी शक्ति उसी को सत्य करने में लगा देता है। भले जीवन भर उनसे युद्ध करना पड़े। किनसे? संबंधियों से, संपर्क में आने वालों से। सच्चाई के लिए जीवन भर युद्ध करता है। इसलिए बड़ा बच्चा कहा जाता है। जो बड़ा बच्चा बाप की प्रॉपर्टी क्या है? ज्ञान धन, जो दुनिया का सबसे बड़ा धन है। उससे बड़ी चीज और कोई होती ही नहीं। जो गीता में भी बताया, क्या है? नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह इस संसार में विद्यते। इस संसार में जो ज्ञान धन है, ईश्वर का दिया हुआ, महेश्वर का दिया हुआ, परमेश्वर का दिया हुआ, उससे बड़ी चीज और कोई होती ही नहीं। इसलिए वो वेदवाणी में भी कहता है ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा मुख के द्वारा, ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल धन बन जावेंगे। क्या कहा है? जो वो ज्ञान रतन देता है, जो वो सच्चाई देता है, वो सत्य की शक्ति जो भी आने वाले षष्ठी चक्र में मनुष्य मात्र के जन्म हैं, उन जन्मों में जो मनुष्य आत्माएं इस शूटिंग पीरियड में रिहर्सल के समय में रिकॉर्डिंग के समय में वो सत्य ज्ञान अपने जीवन में धारण करती है, दूसरों को धारण कराती है, स्वयं सुनती है, दूसरों को सुनाती है, स्वयं समझती है, दूसरों को समझाती है, और जितना जितना ऐसा करती है उतने उतने वो जन्म जन्मांतर के लिए क्या बन जावेंगे? नहीं, स्थूल धनवान बन जावेंगे। क्या कहा? तो साबित हुआ कि सबसे बड़ी शक्ति संसार में क्या है? है सत्य। शक्ति को ही ज्ञान कहा जाता है, शक्ति को ही भगवान कहा जाता है। झूठा है तो भगवान नहीं, सच्चा है तो भगवान। ऐसा भगवान जिस शक्ति में से ये सारा संसार उजागर होता है, सत्य की दुनिया बनती है सतयुग, और वो ही सत्य जब इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर देहबान वाले आते हैं, देह अहंकारी धर्म पिताएं आते हैं, जुड़ा निराकारी स्टेज धारण करने वाले मनुष्य सृष्टि के बाप को जानते हैं। कौन से बाप को? निराकारी आत्मा, और निराकारी आत्मा जो जन्म जन्मांतर साकार देह धारण करती है, उन दोनों की प्रवृत्ति को जो नहीं मान पाते, नहीं समझ पाते, वो ही देहधारी धर्म पिताओं के रूप में जन्म लेते हैं। क्योंकि बाप और बाप के प्रैक्टिकल पार्ट को नहीं जानते। जो प्रैक्टिकल पार्टधारी क्या करता है? सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त बनता है, निमित्त माने साकार। इसलिए शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है कौन? वो धर्म पिता जिसके नाम पर सत्य सनातन धर्म स्थापन हुआ, उसका नाम पड़ता है ब्रह्मा का बड़ा पुत्र सनत कुमार। जो शास्त्रों में योगीश्वर भी गाया हुआ है, ज्ञानेश्वर के साथ साथ, माने ज्ञानियों का भी ईश्वर और योगियों का भी ईश्वर। योगियों का कंट्रोलर, योगियों पर शासन करने वाला, स्वयं योगी होगा या नहीं होगा? है स्वयं योगी, पहले बाद में बच्चे नंबर बार, वो है मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसको इस सृष्टि के देह अहंकारी सभी धर्म पिताओं ने माना है। जो धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, परंतु उन ग्रेट फादर्स को वर्षा देने वाला कौन है? जो उन ग्रेट फादर्स के फॉलोअर्स हिटलर नेपोलियन जैसे बड़े बड़े विश्व विजय की आकांक्षा रखने वाले राजाएं हुए, वो कंट्रोलिंग पावर उन्होंने कहां से ली, कब ली, किसने सिखाई, कब सिखाई, या अपने आप अंदर से पैदा हो गई कंट्रोलिंग पावर? है ज्ञान किससे लिया? कौन से बाप से? निराकार बाप से। निराकार छोटे छोटे बच्चों को देता है या बड़े बच्चे को देता है? राजा जी कैसे ली? जो छोटे छोटे धर्म पिताएं हैं नंबर बार, वो सुप्रीम सोल बाप जो बापों का बाप है, उसका ऊंचे ते ऊंचा वर्षा, सत्य का वर्षा, ज्ञान का वर्षा धर्म पिताएं डायरेक्ट लेते हैं क्या? हैं? तो कैसे लेते हैं? हाँ, इसलिए वेद वाक्य है, कि मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं। या कहा जाए सूर्य को सूर्य का टाइटल देता हूं। पहले जिसको देता हूं वो अज्ञान के अंधकार में था या रोशनी में था? अंधकार में था। वो आकर के टाइटल देता है। असली सूर्य वो है, इस सृष्टि पर आता है तो जिसको टाइटल देता है उसका भी टाइटल बाप के टाइटल के आधार पर पड़ता है। इसलिए दुनिया में परंपरा पड़ गई, बच्चे को जो टाइटल मिलता है किससे मिलता है? बाप का टाइटल बच्चे को मिलता है। ये टाइटल लेने और धारण करने की परंपरा कहाँ से पहले पहले शुरू हुई? संगम युग से शुरू हुई। और किसने शुरू की है?
शिव बाप ने शुरू
की। तो ऊंचे तो ऊंचा टाइटल तो ऊंचे ते ऊंचे ने दिया, बाकी जो और टाइटल हैं वो कहां से आए? जैसे ब्राह्मणों में नौ कुरियां मानी जाती हैं, कोई सांडिल्य गोत्र, कोई भारद्वाज अपने नाम के आगे लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। तो ये टाइटल तो नंबर बार बाद में मिले ना इस संसार में। ऊंचे थे ऊंचा टाइटल क्या हुआ? सूर्य का टाइटल हुआ, सूर्यवंशी। और सूर्यवंशी भारतीय शास्त्रों में कौन गाया हुआ है? राम गाया हुआ है। कृष्ण को सूर्यवंशी कोई नहीं कहता। दोनों ही चंद्रमा के रूप में सूर्य से रोशनी तो लेने वाले हैं, इसलिए कृष्ण चंद्र भी कहा जाता है, रामचंद्र भी कहा जाता है। लेकिन पहले पहले लेने वाला कौन है? तो पहले का नाम गाया जाता है, राम सूर्यवंशी। कृष्ण को फिर कुछ न कुछ गिरती कला का कहेंगे या सूर्यवंशी कहेंगे? गिरती कला का कहेंगे, क्योंकि चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य कलाओं में बंधा हुआ होता है क्या? है नहीं। और चंद्रमा कलाओं में बंधा हुआ होता है, कभी 16 कला संपूर्ण, कभी कलाहीन। तो जब ऊंचे से ऊंचा बाप इस सृष्टि पर आता है, आत्माओं का बाप, तो वो अपना टाइटल इस मनुष्य सृष्टि की बड़े से बड़े पार्टधारी आत्मा को देता है। और वो वास्तव में सूर्य की तरह सदा डिटैच रहने वाला है, पांच तत्वों से या पांच तत्वों का संघात पृथ्वी से। वो सूर्य सदा डिटैच रहने वाला है कि कभी अटैच रहने वाला है? वो उदाहरण है इस दुनिया का, सूरज चांद सितारे ये सब उदाहरण हैं, नदियां पहाड़ शहर। तो वो ज्ञान सूर्य आकर अपने बच्चे को जो आत्मा रूपी बच्चा है उसको प्रवृत्ति मार्ग का पक्का रहने का उपदेश देता है, सच्चाई बताता है, या आप सामान्य वृत्ति मार्ग वाला बनाता है? है प्रवृत्ति मार्ग वाला बनाता है। वो आत्मा सदा प्रवृत्त होने के कारण ज्ञान सागर भी कही जाती है, और धरती माता कही जाती है। क्या कहते हैं धरती को? माता। वो धरती माता का जो चैतन्य रूप है उसे शास्त्रों में सीता कहा गया, धरणी से ही जन्म लेती है और अंत में धरणी में ही समा जाती है। और वो धरणी माता इस संसार में चौथाई हिस्से में व्यक्त होती है, और सागर तीन हिस्से में रहता है। तो कौन किसकी गोद में समाया हुआ है? सागर की गोद में धरणी समाई हुई है। दोनों अटैच हैं या डिटैच हैं? अटैच हैं। कभी डिटैच नहीं होते क्या? हा? बोला तो ये है, वेदवाणी में ब्रह्मा के मुख से तुम सब सीताएं हो, नंबर बार, मतलब तुम सब सीताएं हो, राम है एक और तुम सब सीताएं, माने देवान की धरणी से जन्म लेती हो और देवान की धरणी में समा जाती है। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, खास मनुष्य षष्ठी रूपी रंगमंच पर कितनी मनुष्य आत्माएं हैं जो 100% अपना देहभान छोड़ ही नहीं पाती? एक राम ही गाया हुआ है जो 100% अपने देहभान को छोड़कर अपनी आत्मा के 100% पवित्र रूप में समा जाता है। इसलिए यादगार दिखाई गई है शिव के मंदिर में, जिसे गीता में कहा है अव्यक्त मूर्तिना, शिवलिंग को। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति।
शास्त्रों में छोटा कैसे क्यों दिखाया?
क्योंकि ब्रह्मा के पुत्रों में राक्षसी पुत्र पहले पैदा हुए, और ज्ञानी और योगी सनत कुमार बाद में जन्म लेता है। इसलिए ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। पहले बड़ा बच्चा पावरफुल प्रत्यक्ष होगा या अज्ञानी बच्चा प्रत्यक्ष होगा? ज्ञान में पावर होती है या अज्ञान में पावर होती है? तो ब्रह्मा का चौथा पुत्र मानसी है, मनसा की सृष्टि से जन्म लेता है, वाइब्रेशन की पावर से। वो अकेला नहीं, कितने जन्म लेते हैं? चार बच्चे जन्म लेते हैं, जो संसार के चार मुख्य धर्मों के चार बीज कहे जाते हैं। सनत सनातन सनंदन सनत कुमार और जो सबसे छोटा पुत्र सनत कुमार है, वो ज्ञान में और योग में सबसे आगे जाता है। इसलिए योगीश्वर और ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञानियों का ईश्वर कंट्रोलर और योगियों का ईश्वर कंट्रोलर। सवाल है कि योगियों का कंट्रोलर निराकार आत्माओं का निराकार बाप है, शिव है, या शिव का बड़ा बच्चा जो शास्त्रों में गाया हुआ है? शिव की तीन मूर्तियां, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ना, ब्रह्मा देव, विष्णु देव और सबसे ऊंची पुरी में महादेव। सबसे ऊंची पुरी में इसलिए कि वो तीनों देवताओं के बीच में मनन चिंतन मंथन की स्टेज में सबसे ऊंची स्टेज में जाता है। उसके बाद है विष्णु का नंबर, सबसे ऊंची स्टेज है शंकर की, इसलिए कि वो सप्त धाम के सबसे नजदीक है। क्या? निराकारी धाम के सबसे नजदीक है। उसके बाद विष्णु और उन तीन देवताओं के बीच में सबसे नीचे ब्रह्मा, क्योंकि सबसे जास्ती और सबसे पहले सुनने सुनाने का काम कौन करता है इस दुनिया में? ब्रह्मा की आत्मा सुनने का और सुनाने का। इसलिए उसको नीची स्टेज में डाल दिया। क्यों है?
स्कूल के नजदीक है, बच्चों से अटैच।
अम्मा ब्रह्मा बड़ी अम्मा, सुनना और सुनाना। समझना नहीं और समझाना भी नहीं, क्या करना? सिर्फ सुनना और सुनाना। इसलिए शास्त्रकारों ने, मूर्तिकारों ने, चित्रकारों ने उनके कान बड़े बड़े दिखा दिए। क्या कौन सा देवता है जो बाप का बच्चा है? मनुष्य सृष्टि के बीच ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा, जगत पिता का बच्चा, वो सुनने सुनाने का काम सबसे जास्ती करता है। सबसे पहले उसके कान सुनते हैं कि कोई और के सुनते हैं? है, सबसे पहले उसी के कान सुनते हैं और सबसे ज्यादा वही सुनाता है, लेकिन न समझता है और न समझा सकता है। तो बच्चा बुद्धि हुआ या प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह बेसमझ कहा जाएगा? है, बेसमझ है। इसलिए जैसे इस दुनिया में कलयुग के अंत में सब बेसमझ मनुष्य मात्र, कोई नहीं समझता कि मेरी असलियत क्या है, मैं कौन हूं, कोई समझता है? इस दुनिया में कोई नहीं समझता, सब बेसमझ हो जाते हैं। तब उन बेसमझों के बीच में वो ऊंचे ते ऊंचा करतार बाप जो कहा जाता है अकर्ता, क्यों करता नहीं है? है, है? कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ मुख से ज्ञान सुनाता है और दृष्टि से जो ज्ञानेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है दृष्टि देता है। तो संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? है, लगता तो है, लेकिन ये जो स्थूल दृष्टि है यही सर्वोपरि है या कोई और तीसरा नेत्र भी है जो ज्यादा शक्तिशाली है? अंधा भी हो उस अंधे को भी वो तीसरा नेत्र की शक्ति है और वो भी उस तीसरे नेत्र से उसे पहचानने के बाद सबसे जास्ती याद कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है, करता है ऐसे नहीं कहा, लेकिन आमादा हो जाए तो कर सकता है, क्योंकि जिसकी और इंद्रियां काम नहीं करती या कोई एक दो इंद्रिय काम नहीं करती उसकी दूसरी इंद्रियां तीखी पावरफुल हो जाती है। तो इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर वो कौन सी आत्मा है जो ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली इंद्रिय का रस भोगती है। कौन सी सबसे शक्तिशाली इंद्रिय है? आंखें? अरे अभी तो बताया, 10 जो स्थूल इंद्रियां हैं उनको भी कौन कंट्रोल करती है? 11वीं इंद्रिय मन। तो मन का जो सबसे जास्ती सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुख भोगने वाली आत्मा है वो हीरो पार्टधारी है। क्या
हीरो पार्टधारी?
उसने ये प्राप्ति कहाँ से की? संगम में की। क्या प्राप्ति गाई हुई है? इन इंद्रियों से परे का सुख पूछना हो, अतिंद्रिय सुख पूछना हो, तो गुप्त रूप में जिन्होंने संबंध जोड़ा है भगवान के साथ प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल इंद्रियों से, उन गोप गोपियों से पूछो, इनसे जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा है, दुनिया नहीं जानती लेकिन वो राजयोग सीखने वाली ईश्वरीय परिवार की 16,000 आत्माएं जो गोप गोपियों के रूप में शास्त्रों में गाई हुई हैं, उन्होंने वो अतिंद्रिय सुख भोगा है। उनमें कोई अब्बल नंबर गोप या गोपी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? 16,108। उनमें जो अव्वल नंबर इंद्रियों से परे का सुख, 10 इंद्रियों का सुख नहीं भोगता, इसलिए उस लिंग में वो इंद्रियां नहीं दिखाई जाती। शिवलिंग में इंद्रियां दिखाई जाती हैं? नहीं दिखाई जाती, इसलिए गीता में उसे अव्यक्त मूर्ति कहा है। जो संसार की खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में मिली है, और भारतवर्ष में जिसके यादगार मंदिर भी सबसे जास्ती बने हुए हैं, और दुनिया में उस निराकार की यादगार भी बहुत है सबसे जास्ती, तो वो अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग जिसका गीता में गायन है, वो निराकार भी है और साकार भी है। साकार तो सभी मनुष्य मात्र हैं इस दुनिया के, और सभी मनुष्य मात्र के अंदर निराकारी आत्मा बैठी हुई है, नहीं बैठी है? तो वो एक का ही गायन क्यों है इतना? जो भक्त है आज भी सामने जाकर हाथ जोड़कर माथा टेक कर कहते हैं, एक को त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता। तू एक को कहा जाता या दो चार को? एक को। तू एक ही है, और एक ही मेरी माता है, एक ही मेरा पिता है। क्यों माता पहले क्यों बोल दिया? अरे दुनिया में पहले माता होती है या माता से भी पहले पिता होता है? पहले पिता होता है, माता जानती है। प्रैक्टिकल में जानती है, बच्चे जाने या ना जाने, तो माता जानती है कि पिता पहले है, फिर भी माता का नाम क्यों पहले लिया। ये परंपरा भारत में माताओं को प्राचीन काल से इतना सम्मान देने की परंपरा कहां से पड़ गई, किसने शुरुआत की, परंपरा किसने चलाई, जो पहले माता फिर पिता है। कैसे है
शिव बाप है,
हाँ
माता के रूप में पहले प्रत्यक्ष,
उसका स्वरूप है। कहते हैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा, भले मनुष्य तन भी हो तो भी काम लेने के लिए उसका नाम पहले क्या रखूंगा, ब्रह्मा। इसलिए भारत में परंपरा है, पहली जीवन में जो माता बनाते हैं उसका ज्यादा मान होता है। नहीं तो बोला है ब्रह्म वाक्य, भारत में एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी लेते हैं, चार चार शादियां भी कर लेते हैं जीवन में। परंतु ज्यादा मान मर्तबा किसका होता है परिवार में, है बड़ी माता का। तो ये परंपरा कहां से चली है, ब्रह्मा माता से, दादा लेखा से है, चतुर्भुजी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, चार मुखी ब्रह्मा, जो ब्रह्मा सो विष्णु, जिस नंबर का ब्रह्मा होगा उसी नंबर का विष्णु बनेगा या फिर बदल हो जाएगी, उसी नंबर का बनेगा। तो पहले नंबर का ब्रह्मा कौन हुआ, बड़ी अम्मा, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, परम ब्रह्म। और नाम किसने दिया है, किसने दिया, परम पुरुष ने। वो आत्मा जिससे परे इस लोक में या पार लोक में कोई उससे परे नहीं होता, जिसका पार कोई भी नहीं पा सकता। तो वो परम ब्रह्म जो कहा जाता है वो काम लेने के लिए नाम रखा है। क्या काम है, नई सृष्टि रचने के लिए माता चाहिए परम पुरुष को। और बड़े के बड़ी माता है, अव्वल नंबर की माता है, तो उससे जो वंश पैदा होगा वो ऊंचा वंश पैदा होगा या नंबरवार या नीचा वंश पैदा होगा, ऊंचा वंश पैदा हो। दुनिया में भी देखते हैं, उदाहरण भी देते हैं, ऊंचे से ऊंचा है सूर्य, कि नवग्रह सूर्य सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा। तो वो बड़ी माता से सूर्य वंश बनता है। क्या यज्ञ के आदि में ही वो सूर्य वंश तैयार हुआ था, पहले पहले वो आत्मा निकली, जिन्होंने विश्वास पैदा किया।
पहला पहला संगठन शुरू हुआ, क्या नाम था? आ माने ब्रह्मा, उ माने विष्णु, मा माने महेश। तीन देवताओं का संगठन, तीन देवताओं की मंडली। ओम मंडली नाम रखा गया। ओम मंडली में
उस परम पुरुष ने, उस परिवार में अपनी सारी ताकत, जैसे दुनिया में कोई बाप होता है, पहले पहले किसी माता से संसर्ग संपर्क होता है तो वो बाप बाप तब कहा जाता है जब एड़ी चोटी की सारी पावर उसमें तिरोहित कर देता है। सब कुछ माशू के ऊपर अर्पण करता है। क्या? सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। तो उसका नाम दिया परम ब्रह्म। इसलिए शास्त्रों में भी गायन है, गुरुरु ब्रह्मा, गुरुरु विष्णु, गुरुरु देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरों को नमन नहीं करता हूँ, एक को नमन करता हूँ। वो परम ब्रह्म जिस आत्मा का टाइटल बनता है, पहला पहला वो आत्मा परिवार की साकार मुखिया हो गई। और दूसरा उसका नाम दिया कि मैं जब आता हूं तो भारत पर आशिक होता हूं। किस पर आशिक होता हूं? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला। जो संगम युग में भी उस ऊंचे से ऊंचे बाप के आने पर, उसको पहचान लेने के बाद ज्ञान की रोशनी में ही रत रहता है जीवन भर, सच्चाई के पट्टे पर खड़ा रहता है जीवन भर, उसका नाम क्या दिया? बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। क्या नाम दिया?
भारत।
वो भारत मातृ देश क्यों कहा गया? दुनिया के जो दूसरे देश हैं, वो मातृ देश क्यों नहीं कहे जाते? एक भारत को ही मातृ देश क्यों कहा गया? कोई कारण होगा है? आते तो हैं, पवित्र तो है धरणी जहां भगवान आते हैं, लेकिन मातृ देश भारत को क्यों कहा? पिता आता है, ऊंचे से ऊंचा बाप आता है, तो पिताओं में सबसे बड़ा पितृ देश होना चाहिए। मातृ देश क्यों? भारत माता का गायन क्यों होता है? भारत पिता को कोई क्यों नहीं कहता, नाम क्यों नहीं लेता? भारत माता का गायन है या भारत पिता का गायन है? क्यों है? नहीं,
आकार तो मानते नहीं विदेश, साकार को नहीं मानते ना।
तो माता साकार होती है कि निराकार? फिर तुम्हारी बात तो लगती नहीं। भारत में माताओं की मान्यता है और दुनिया भी मानती है कि जितने भी धर्म और धर्म के फॉलोअर्स और धर्म पिता आए वो कहाँ से आए, उनका ओरिजिन कहाँ से है? भारत से है। तो भारत माता ही जगत जननी है और उसको माता बनाने का टाइटल देने वाला परम पुरुष है। क्या? परम पुरुष है। वो परम पुरुष है जब आता है तो भले पुरुष तन में भी आए, पुरुष तन में भी प्रत्यक्ष हो, भले तन पुरुष का ही क्यों न हो, संसार में प्रत्यक्ष होगा तो पुरुष तन से ही प्रत्यक्ष होगा, पुरुष तन में ही आता है, लेकिन काम लेने के लिए नाम किसका रखता है? है माता का रखता है, नाम रखता है ब्रह्मा, अव्वल नंबर ब्रह्मा। तो अव्वल नंबर संतान पैदा करेगी या नंबर वार द्वयम तीम चौथे पांचवें आठवें नंबर की नहीं संतान पैदा करेगी, अव्वल नंबर की संतान। वो अव्वल नंबर का वंश क्या कहा जाता? सूर्यवंश कहा जाता। वो सूर्यवंशी बच्चे जो सिंध हैदराबाद में आदि में भी थे, सत्संग में, ओम मंडली में, जहां की आबादी 9 लाख थी उस समय सन 36-37 में, उनमें से आधे 4-4.5 लाख कैसे बच्चे है, कैसे बच्चे? जन्म जन्मांतर की आत्माएं, जन्म जन्मांतर ज्यादा जन्म लेने वाले पुरुष रूप में या स्त्री रूप में, ज्यादा जन्म जिनके पुरुष रूप के होते हैं माने बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे, कैसे बच्चे? बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे नंबर वार। जिनका गायन रुद्राक्ष के रूप में होता है, कैसी माला? कैसी माला? रुद्राक्ष। रुद्र माने रौद्र रूप धारण किया जिसने, ऐसा भयंकर रूप धारण किया कि सब खलास हो गया, सारी दुनिया खलास। और उसकी अक्ष माने आंख, जो रुद्रगण कहे जाते हैं, वो रुद्राक्ष के मण के जिनके संगठन रूपी माला बनती है, ऊंचे से ऊंचे बाप के सृष्टि पर आने पर वो बाप समान आत्माओं की माला 4.5 लाख आत्माएं पहले पहले निकलती हैं और बाद में वो आत्माएं 4.5 लाख निकलती हैं जो रात के सितारे हैं। क्या? वो आसमान के सितारे जड़ हैं, ये धरती के चैतन्य सितारे हैं। वो आसमान के सितारे भी 2 प्रकार के, एक सूर्य की रोशनी में पलने वाले और एक चंद्रमा की रोशनी में पलने वाले। जो चंद्रमा की रोशनी में पलने वाले हैं, वो अपना प्रकाश जब तीव्र रूप में फैलाते हैं तो चंद्रमा का प्रकाश खत्म हो जाता है, वो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। और सूर्य की रोशनी में पलने वाले सितारे अपने प्रकाश को सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं, अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते, बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो हम बच्चे यज्ञ के आदि में भी थे, कौन से सितारे, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? सूर्यवंशी सितारे थे। ऐसा कोई भी सितारा नहीं हो सकता जो यज्ञ के आदि में न हो और यहाँ आकर के बैठ जाए और ज्ञान में एडवांस से चला जाए, ऐसा होता ही नहीं। जो पुराने पुराने हैं, 40-50 साल पहले, 80 साल पहले के, वो उस ज्ञान की गहराई को नहीं समझ सकते। समझते हैं? नहीं समझते। और छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां उस ज्ञान को कैच कर लेती है, तो क्या साबित होता है? वो आत्माएं बाप समान आत्माएं हैं, ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं या चंद्रमा के बच्चे हैं? ज्ञान सूर्य के बच्चे। तो देखो लिखा हुआ भी है कि ये भाग्यशाली रथ है इनको बनाने वाला। क्या? आत्मा ठीक है, भाग्यशाली बनती है, आत्मा दुर्भाग्यशाली बनती है, लेकिन बनाने वाला? अरे कोई बाप होता है? मनुष्य सृष्टि का कोई बाप है या नहीं है? है। तो भाग्यशाली रथ है निमित्त। ओम शांति।